भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। विच ईयर वॉज इट 1975? विच ईयर दिट प्रॉपर कंप्लीट दी चैतन्य चतुर्मृत? Which year?
I don't know the year.
I think it was 74. Hare Krishna. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज एकादशी है और मैं जब अंदर आया तो मेरे गुरु भाई नरसिंहानंद प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि आज के दिन श्री प्रभुपाद जी ने इस हरे कृष्ण लैंड में चैतन्य चरितमृत का अनुवाद समाप्त किया था। चैतन्य चरितमृत है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। प्रभुपाद जी कहते थे भगवद गीता है हाई स्कूल, भागवतम है कॉलेज और चैतन्य चरितमृत है पोस्ट ग्रेजुएट। तो चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश, उनकी लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। कुछ दिन पहले हम भक्तों ने नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि मनाई थी। नरोत्तम दास ठाकुर अपनी कविता में कहते हैं आप दया दयालु हो, प्रकट हुए थे किस लिए? पतितों के उद्धार के लिए। तो ये चैतन्य चरितमृत ग्रंथ प्रभुपाद जी ने बंगला से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है और उसका अनुवाद भारत की लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया है, खास करके हिंदी में, गुजराती में, मराठी में। तो आप इन ग्रंथों को पढ़ो। आप में से कितने भक्तों के पास चैतन्य चरितमृत की कॉपी है घर में? हिंदी में नहीं, आउट ऑफ स्टॉक। हमारे लाइब्रेरी में है, आप लोग पढ़िए। और चैतन्य चरितमृत का सार प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया था टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य नाम के ग्रंथ में। टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य में चैतन्य चरितमृत का सार है, तो उसे पढ़िए। चैतन्य चरितमृत की। तो एकादशी के दिन हम लोग श्री प्रभुपाद जी के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रभुपाद लीलामृता को सुनकर। और आज हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा चैतन्य चरितमृत प्रभुपाद लीलामृता को पढ़ें, और अगर समय हुआ तो एक भागवत का श्लोक भी पढ़ लेंगे और ग्रंथों के वितरण की सेवा के महत्व का भी चर्चा करेंगे। और ज्यादा चर्चा इस विषय पर कल दोपहर के लेक्चर में करेंगे। तो जैसे आप जानते हो ये कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना। इसको आप दामोदर के महीने के नाम से भी बुला सकते हो, क्योंकि इस महीने भगवान दामोदरष्टक का उच्चारण हम करते हैं। और दीपावली वाले दिन भगवान ने अपनी दामोदर लीला प्रकट की थी। तो शास्त्र में कहा गया है कि कार्तिक का महीना सबसे शुभ दिन है, शुभ महीना है भक्ति के लिए। जैसे मान लो अगर कोई वस्तु 1,00,000 रुपए में मिल रही है और आप उसका भाव डिस्काउंट कर दें 1,000 रुपए में, तो सब खरीदने पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? तो सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन, वही लाभ आप इस कलयुग में प्राप्त कर सकते हो हरि नाम के उच्चारण के द्वारा। और कार्तिक के महीने में खास करके जो भी आप सेवा करते हो, हरि नाम का उच्चारण, शास्त्रों का अध्ययन, दान, सेवा, इन सब का आपको हजारों गुना लाभ होता है। तो कार्तिक के महीने में भक्त जो हैं खास करके प्रयास करते हैं कि अपनी अपना समर्पण भगवान को बढ़ाएं, और कार्तिक के महीने में हजारों भक्त वृंदावन धाम जाते हैं निवास करने के लिए। पर तो आप कहोगे हम सबको वृंदावन जाना चाहिए, हम बॉम्बे में क्या कर रहे हैं। पर प्रभुपाद जी ने यह भी कहा है कि जिस स्थान में राधा कृष्ण की पूजा हो रही है वो स्थान वृंदावन है। तो कार्तिक के महीने में आप अगर राधा दास भाई के मंदिर में आओ रोज दर्शन के लिए, तो आप क्या समझोगे? आप वृंदावन धाम में हो। वृंदावन को आप कहां भी स्थापित कर सकते हो अगर आप उस वातावरण में भगवान का गुणगान करो और भगवान की सेवा करो। तो कार्तिक के महीने में हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम अपना समर्पण भगवान के चरण कमल में क्या करें, बढ़ाएं। और आप थोड़ा भी प्रयास करोगे तो भगवान आपका लाखों गुना सहयोग देंगे। स्कंद पुराण में एक कथा है, एक मंदिर में, प्राचीन मंदिर में एक चूहा रहता था। वो चूहा जो दिया भगवान को अर्पण करते हैं उसमें जो घी बच जाता है उसको जाकर खाता था, ये था इसका भोजन। तो एक दिन वो घी खाने गया, जब दिया जल रहा था, क्योंकि दिया जल रहा था जब वो घी खाने गया उसका मुंह जल गया, और जो रुई थी जिसमें आग थी वो रुई उसके दांत में फंस गई। तो रुई दांत में फंस गई, उस शरीर जल रहा था, तो चूहा रुई को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहा था। तो वो जो प्रयास था वो भगवान ने नाचने के रूप में स्वीकार किया, और फिर वो चूहा मर गया, और भगवान वो चूहा तुरंत भगवान के धाम गया। तो कार्तिक के महीने में इतनी तुच्छ सेवा क्या लाभ मिला? भगवान के धाम गए। तो कार्तिक के महीने में कई शुभ दिन हैं। अभी दिवाली भी आएगी, प्रभुपाद जी ने भी अपने शरीर को त्यागा था कार्तिक के महीने में, और गोवर्धन पूजा का उत्सव भी आएगा, और कई उत्सव बीत गए हैं। तो कार्तिक का महीना भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है, और यहाँ मंदिर में सुबह के समय और शाम के समय दामोदर अष्टक का उच्चारण होता है, उसका लाभ उठाओ। और अगर किसी हालत आप मंदिर नहीं भी आ सको तो अपने घर में अपने मंदिर में अब दिया अर्पण कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा एकादशी के दिन हम लोग प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ते हैं। प्रभुपाद लीलामृत में श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, किस प्रकार प्रभुपाद जी ने अधिक संघर्ष किया कृष्णा भक्ति की स्थापना के लिए। तो इस समय जो हम पढ़ रहे हैं हम उस अध्याय को पढ़ रहे हैं जहां की वर्णन किया जा रहा है प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, पहले केंद्र खोला और जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में, और इस आदेश का पालन करने के लिए, इस आदेश को सफल बनाने के लिए प्रभुपाद जी को कई सालों के लिए बड़ा गहरा संघर्ष करना पड़ा। और जब संघर्ष करने के पश्चात जब वो अमेरिका भी लौटे तो एक साल के लिए लगभग कोई रहने का ठिकाना नहीं था, उनके पास ट्रांसलेशन जरा और पीछे यू गो लिटिल बिट मोर इन द बैक बिकॉज आई कैन हियर इट. तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो रास्ते में दो बार उनको हार्ट अटैक भी आया और जब दूसरा हार्ट अटैक आया तो प्रभुपाद जी सोचने लगे अब ये योजना सफल नहीं होगी. पर फिर भगवान सपने में आए और प्रभुपाद जी नाव में बैठे थे, भगवान नाव को चला रहे थे और भगवान ने कहा तुम्हारी योजना अवश्य सफल होगी. और जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे बॉस्टन में, जब उन्होंने वहां का वातावरण देखा तो प्रभुपाद जी ने कहा कौन सुनेगा क्षेत्रीय महाप्रभु जी के संदेश को इस वातावरण में. और आगे उन्होंने ये भी कहा कि राधा रानी जी की असीम कृपा से हर कार्य सफल हो सकता है. तो बड़े संघर्ष के बाद पहला केंद्र खुला था एक स्टोर फ्रंट में, और वो केंद्र खुला था, कई अमेरिकन शिष्य जुड़े थे. जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो अपने साथ 200 कॉपीज श्रीमद् भागवतम के ले गए थे जो उन्होंने प्रथम स्कंद का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में, और एक मृदंगा समान ढोलकी ले गए थे. न्यूयॉर्क में एक पार्क है थॉमकिन स्क्वेयर पार्क, आज अगर आप उस पार्क में जाओगे तो आपको वहां एक प्लैक दिखेगा जिसमें लिखा है This is where the founder of the Hare Krishna movement started this movement. ये पेड़ है यहाँ की हरे कृष्ण संस्था के संस्थापक आचार्य ने यहाँ आंदोलन शुरू किया था. तो प्रभुपाद जी की कोई जान पहचान नहीं थी, अंदाजा लगाओ लगभग 70 साल का व्यक्ति विदेश में जा रहा है पहली बार जिंदगी में. प्रभुपाद जी ने पहली बार जिंदगी में बर्फ भी देखी न्यूयॉर्क में, और 40 रुपए के साथ $8 था उन दिनों में. और प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था क्योंकि गुरु महाराज के आदेश सफल होगा, क्योंकि क्षेत्रीय महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी के हर कोने में यह हरे नाम पहुंचेगा. क्षेत्रीय महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी पृथ्वी आचार्य नगर निगम सर्वत्र प्रचार और विमोर नाम, विश्व में जितने गांव है नगर है सब जगह यह हरिनाम का उच्चारण होगा. तो भक्ति सिद्धांत जी ने इस भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए प्रयास किया था, कई सन्यासी शिष्यों को भेजा इंग्लैंड जर्मनी, पर बिना सफलता के वो भारत वापस लौट आए. तो हमारे गुड़िया वैष्णव भी सोच रहे थे हाँ क्षेत्रीय महाप्रभु जी की भविष्यवाणी तो है, वो लगता है कलयुग बहुत गहरा हो गया है और सफल नहीं होगा. पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि सफल होगा, और प्रभुपाद जी प्रयास करते गए और एक साल अमेरिका में भी अत्यंत संघर्ष के पश्चात उन्होंने पहला केंद्र खोला. कहाँ? न्यूयॉर्क शहर में. वो पहला केंद्र जो खोला न्यूयॉर्क शहर में वो एक स्टोर फ्रंट था, ऐसा नहीं कि ऐसी बड़ी बिल्डिंग थी जैसे ये है. एक स्टोर फ्रंट जैसे एक दुकान होती है ना, दुकान का छोटी सी दुकान, छोटी सी वहां. और उस समय प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे किसी को भी दीक्षा नहीं दी थी. जब प्रभुपाद जी जब ये संस्था शुरू की, प्रभुपाद जी ने पहले उन्होंने भक्तों को कहा 64 माला दिन में करने के लिए. तो अमेरिकन भक्तों ने 64 माला करना प्रयास किया पर कोई नहीं कर पाया. तो कुछ दिन बाद ये शिष्य प्रभुपाद जी के पास गए और कहने लगे स्वामी, उन दिन में प्रभुपाद को स्वामी बुलाते थे, स्वामी वी आर अमेरिकन्स वी कांट चैंट 64, हम 64 माला नहीं कर सकते. तो प्रभुपाद ने कहा 32 माला करो. कुछ दिन बीत गए, और भक्ति भक्तों ने कहा कि हम 32 माला भी नहीं कर सकते। फिर प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला और उसे कम नहीं। तो हम भक्तों का प्रयास रहता है कि कम से कम 16 माला का जाप रोज करें और एकादशी उपशेष दिनों और शुभ दिनों पर प्रयास रहना चाहिए कि हम 25 माला और अधिक भी करें। और खास करके इस कार्तिक के महीने में हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम माला का जाप बढ़ाएं, तपस्या बढ़ाएं, शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाएं, सेवा भाव बढ़ाएं और क्या घटाएं, माया का आकर्षण। भक्ति का भाव बढ़ाओ और माया का आकर्षण घटाओ, ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य इस कार्तिक के महीने में। तो हम नीला मित्र से थोड़ा पढ़ेंगे और फिर इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यह है सितंबर 8, पढ़ो। नहीं, लीला मित्र से पढ़ो ना। अच्छा, आप नहीं है लीला मित्र। तो यहां जन्माष्टमी डे, द अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वन ईयर बिफोर प्रॉपर हैज ऑब्जर्व कृष्णा'स बर्थडे एट सी, I brought the Jaladuta just out of Colombo. Now exactly 1 year later, in a small crew of Hare Krishna chanters, he would gather them all together, having them observed a day of chanting, reading scriptures, fasting and feasting, and the next day would be initiation. At 6 o'clock, Prabhupada came down and was about to give his morning class as usual, when one of the boys asked if he would read from his own manuscript. Prabhupada appeared shy, yet he did not hide his pleasure at having been asked to read his own Bhagavad Gita commentary. Usually, he would read a verse from Dr. Radhakrishna's Oxford edition of the Gita. Although the commentary presented impersonal philosophy, the translations, Prabhupada said, were 90% accurate. But this morning, he sent Roy up to fetch his manuscript, and for an hour he read from his typewritten pages. So यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि जब हमारे न्यूयॉर्क के केंद्र में पहली बार इतिहास में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था, और एक साल पहले प्रभुपाद ने जन्माष्टमी का उत्सव कहाँ मनाया था, पानी के जहाज में। जैसे आप जानते हो, प्रभुपाद जी जालदूता जहाज में निकले थे भारत से, और जन्माष्टमी वाले दिन भी वो कहाँ थे, जहाज में थे। तो ये यहाँ वर्णन किया जा रहा है सितंबर 8, 1966 का, जबकि इस्कॉन का पहला केंद्र खुला था कहाँ, न्यूयॉर्क शहर में। वहां प्रभुपाद जी ने पहला केंद्र खोला था और प्रभुपाद जी ने पहली जन्माष्टमी का प्रबंध किया था कहाँ, न्यूयॉर्क में। और एक साल पहले कहाँ था जन्माष्टमी, प्रभुपाद जी ने जन्माष्टमी मनाई थी पानी के जहाज में। सो जन्माष्टमी वाले दिन प्रभुपाद जी ने शिष्यों को कहा, आज हम क्या करो, जब बढ़ाओ, शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाओ, तपस्या बढ़ाओ, और रात को क्या होगा, रात को फिर फीस्ट, बड़ा उत्सव होगा। तो भक्तों के लिए ये नया अभ्यास था। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उससे पहले खास करके अमेरिकन लोगों ने, बहुत कम ने कृष्णा का नाम भी सुना था, बहुत कम ने भगवत गीता का नाम भी सुना था। ये भारत में तो आप सबका सौभाग्य है कि बचपन से ये राम और कृष्णा का नाम आप सुनते आ रहे हो, पर विदेशों में, पश्चिम देशों में बहुत कम लोगों के पास कृष्णा के विषय में सूचना थी। ईश्वर प्रभुपाद जी की महानता है, प्रयास है आज विश्व के कोने कोने में आप हर एक किसी कोने में जाओ आपको हरे कृष्ण के भक्त मिलेंगे। तो यहां ये इस भाव का वर्णन किया जा रहा है। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो अपने साथ केवल श्रीमद् भागवत की कॉपीज ले गए थे। जब गीता पहले वो गीता पर उपदेश देते थे तो उपदेश देते थे किसी और की, डॉक्टर राधा कृष्णा का अनुवाद के अध्याय से। हालांकि डॉक्टर राधा कृष्णा के अनुवाद में एक मायावादी का प्रभाव है, पर प्रभुपाद जी का अनुवाद 90% ठीक है, पर तात्पर्य में मायावादी का प्रभाव है। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य रॉय ने कहा, प्रभुपाद व्हाई डोंट यू रीड फ्रॉम योर ओन मैन्युस्क्रिप्ट, आपने जो अनुवाद किया है वो गीता का क्यों नहीं पढ़ते। तो प्रभुपाद जी ने पहले भारत में गीता का अनुवाद किया था। कार्तिक के महीने में प्रभुपाद जी 1932 में वृंदावन धाम गए थे और 1935 में कार्तिक के महीने प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी से मिले। कहां? राधाकुंड में। उस वक्त भक्ति सिद्धांत जी 5000 शिष्यों के साथ बड़ा परिक्रम कर रहे थे और राधाकुंड में जब मिले, भक्ति सिद्धांत जी ने एक कागज और पेंसिल लिया, उससे एक मृदंगा की तस्वीर खींची और भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि अगर भगवान तुम्हें धन देंगे तो इसे ग्रंथों को प्रकाश अनुवाद करना और ग्रंथों को प्रकाशित करना और ग्रंथों का वितरण करना। तो ये आदेश जिसे आप सब परिचित हो, ये आदेश भक्ति सिद्धांत जी ने दिया था कब? कार्तिक के महीने में श्रील प्रभुपाद जी को वृंदावन धाम में। तो प्रभुपाद जी के मन में सदा यही प्रयास था और 1936 में भक्ति सिद्धांत जी अप्रकट हुए थे और उनके अप्रकट होने से पहले प्रभुपाद जी ने एक पत्र डाला था उन्हें, जिसमें प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा। उन्हें प्रभुपाद जी ने कहा, आपके कई सन्यासी शिष्य हैं जो इतनी महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं आपके लिए, पर मैं आपके लिए कोई ज्यादा सेवा नहीं कर रहा, मैं आपको संतोष कैसे कर सकता हूं। भक्ति सिद्धांत जी ने अपने उनके पत्र के उत्तर में वही आदेश दिया जो कि उन्होंने 1922 में पहली मुलाकात में दिया था। क्या? तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ क्षेत्रीय महाप्रभु जी के संदेश को कहां? पश्चिम देशों में। तो इस भाव को सफल बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथों का अनुवाद भी शुरू कर दिया था। तो भारत में प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का पूरा अनुवाद किया था, तात्पर्य और अनुवाद के साथ। पर प्रभुपाद जी के पास धन नहीं था इस अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए। तो प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे लोगों से धन का दान मांगने के लिए और उनको मद्रास चेन्नई में एक सज्जन मिला जिसने कहा, आप मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं प्रकाशित करने में धन दूंगा। तो प्रभुपाद जी जब कलकत्ता वापस आए, वो मैन्युस्क्रिप्ट को लेने के लिए, दिखाने के लिए, तुम्हें क्या पता लगा कि किसी ने वो रद्दी के रूप में वो गीता का अनुवाद बेच दिया। तो प्रभुपाद जी बड़े निराश हुए, जैसे भारत में रद्दी बेचते हैं ना, किसी ने रद्दी के रूप में वो पूरा अनुवाद बेच दिया। और फिर प्रभुपाद जी ने पूरा गीता का अनुवाद फिर से किया और प्रभुपाद जी ने इसे छापा किस नाम से? भगवद गीता एज इट इज। अमेरिका में एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है मैकमिलन, तो जो प्रभुपाद जी की गीता जो पहली बार छपी थी अमेरिका में, वो छपी थी मैकमिलन के द्वारा। तो यहां वर्णन किया जा रहा है कि प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट से पढ़ना शुरू कर दिया था श्री प्रभुपाद की। तो आप यहां थोड़ा आज के जो श्लोक है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? समय बचाने के लिए हम सीधा अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे। यह है श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद 13वां अध्याय श्लोक नंबर 33। हाँ जल्दी।
मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस धरातल पर शिशु, तरुण, बालक, अवधूत या परम ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। यदि वे विभिन्न वेशों में कहीं छिपे हुए हैं तो भी मैं सबको नमस्कार करता हूँ। उनके अनुग्रह से उनका अपमान करने वाले वंशों का कल्याण हो। तात्पर्य, राजा रघुगण को अत्यंत पश्चाताप हुआ क्योंकि उन्होंने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए बाध्य किया था। अतः उन्होंने समस्त प्रकार के ब्राह्मणों तथा स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वंदना करनी प्रारंभ की, चाहे वे शिशु रूप में हो या किसी भी वेश में छिपे हुए हों। चारों कुमार 5 वर्षीय बालकों के रूप में सर्वत्र घूमते रहते हैं। इसी प्रकार अनेक ब्राह्मण बच्चे तरुण या अवधूत रूप में विश्व का परिभ्रमण करते रहते हैं। सामान्यतः राजा लोग अहंकार वश इन महापुरुषों का तिरस्कार करते रहते हैं। अतः राजा रघुगण ने उनको ही सादर नमस्कार किया जिससे अहंकारी राजवंश नरक को न प्राप्त हो। यदि कोई महापुरुष का अपमान करता है तो श्री भगवान उसे क्षमा नहीं करते। दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश का अपमान किया था, अतः जब वे भगवान विष्णु के पास क्षमा के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्षमा नहीं प्रदान की, उन्हें महाराज अम्बरीश के चरणों पर गिरना पड़ा। यद्यपि वे क्षत्रिय गृहस्थ थे, मनुष्य को चाहिए कि वह वैष्णव तथा ब्राह्मणों का अपमान न करे।
तो यहाँ आप महान रघुगणा का उच्चारण सुन रहे हो। जैसे आप जानते हो यहाँ इस अध्याय में आप पढ़ते हो कि रघुगणा जद भारत से ज्ञान की भीख मांग रहे हैं। शुरू में तो जब जद भारत को जोड़ा था उनकी पलकी उठाने के लिए, तो उन्होंने सोचा ये जद भारत ये तो गुंगा और बहरा व्यक्ति है, तो उसको डांटा तुम पलकी को तेज क्यों नहीं ले जा रहे। और जब जद भारत ने चर्चा शुरू की तो उन्हें पता लगा ये जद भारत गुंगा बहरा मूर्ख व्यक्ति नहीं पर क्या है ऊंचे कोटि का उन्हें पता लगा कि जद भारत कौन है, ऊंचे कोटि का संत है। वहां ढूंढना हालांकि राजा थे, उन्हें पता लग गया कि मैंने अपराध किया है और वो पलकी से नीचे उतरे तुरंत वहां जद भारत के शरणागत हुए और जद भारत से अपराध की क्षमा मांगी और फिर उनके शिष्य भी बन गए और उनसे ज्ञान की भीख मांगी। तो इस श्लोक में आज के श्लोक में महान रघुगणा अपना आदर दे रहे हैं उन महान संतों को जो कि पृथ्वी पर अनेक रूपों में प्रस्तुत करते हैं पर वो ये अपना असली स्वरूप नहीं दिखाते। जैसे जद भारत उनका समाज में क्या व्यवहार था, जैसे वो गूंगे हैं और बहरे हैं पर वो गूंगे बहरे नहीं थे। इसी प्रकार तात्पर्य में चार कुमारास का वर्णन है जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जो कुमारा थे उनके पास खास योगिक शक्ति थी जिसके द्वारा उन्होंने अपने शरीर को बड़े होने से रोक दिया था। तो जो संत महात्मा हैं वो अपने आप को अनेक रूपों में प्रस्तुत करते हैं, कभी कभी गूंगे बहरे के रूप में, कभी कभी किसी बालक के रूप में, प्रिंस जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, फिर जो संत महात्मा हैं इनका भाव एक ही रहता है कि हम लोगों का उद्धार करें। तो यहां महाराज लोगों ने कह रहे हैं कि इन संतों की दया से, गुरु की दया से हम भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हम रहोगे ना कौन था, राजा था, तो हम जो राजा हैं हम कई बार अपराध कर देते हैं, तो वो अपने अपराधों के लिए क्या मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति का जो सुंदर बगीचा है वो नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भक्ति का बीज अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है, और ये बीज उगता है श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। पर जो भक्ति का सुंदर बगीचा है नष्ट हो जाएगा अगर एक पागल हाथी आए कहां इस बगीचे में। तो वैष्णव अपराध अनेक प्रकार के अपराध हैं, गुरु अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, हरिनाम अपराध, इन अपराधों से भक्ति का जो बीज है, बगीचा है, क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप शास्त्र में बार बार पढ़ते हो इस विषय के ऊपर कि हमें अपराधों से बचना चाहिए। अगर कोई भक्ति ये सोचे हाँ आई एम सो एडवांस, मैं इतना एडवांस हूं कि अपराधों का कोई परिणाम नहीं होगा, ये एक बहुत भारी भूल है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में अमरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का उदाहरण देते हैं। दुर्वासा मुनि के हृदय में ईर्ष्या थी अमरीश महाराज के प्रति, अमरीश महाराज को इतना आदर मिलता है और मैं इतना बड़ा योगी हूं और मुझे ये आदर नहीं मिल रहा। अमरीश महाराज जुड़े हुए हैं भगवान की सेवा में, तो अमरीश महाराज को दुर्वासा मुनि को अमरीश महाराज ने निमंत्रण दिया था भोजन स्वीकार करने के लिए। दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंचे अमरीश महाराज के महल में, जो अपना व्रत तोड़ने वाले थे, एक साल लगभग उन्होंने व्रत रखा था। अमरीश दुर्वासा ने कहा मैं दोपहर का स्नान करके आता हूं भोजन करने, और जब वो स्नान करने गए तो भूल गए कि अमरीश महाराज उनकी राह देख रहे हैं। समय बीत रहा था वर तोड़ने का, अमरीश महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे पूछा मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, मैंने दुर्वासा मुनि को निमंत्रण दिया है भोजन स्वीकार करने के लिए और वो आई नहीं, अभी समय समाप्त हो रहा है वर तोड़ने का। संतों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा अब पानी पी लो, जल पीना एक प्रकार से अब व्रत तोड़ रहे और एक प्रकार से नहीं तोड़ रहे। पर जैसे ही पानी पिया दुर्वासा मुनि को उन योगिक सिद्धियां थी, आप तो यात्रा करते हो हवाई जहाज में, गाड़ी में या किस में, दुर्वासा मुनि को ना पासपोर्ट ना वीजा ना टिकट की आवश्यकता है, 10,000 शिष्यों के साथ हर जगह पहुंच जाते थे। तो दुर्वासा मुनि को पता लग गया कि अमरीश महाराज उनकी राह लिए देखे, राह उनके बेगरा जल पी लिया है, तो उन्होंने एक राक्षस पैदा किया अपने सीके से अमरीश महाराज को जलाने के लिए। भगवान के सुदर्शन चक्र ने सर्वे मना कृष्ण पदार बन गया, अमरीश महाराज जुड़े हुए थे भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, और भगवान ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र, और दुर्वासा मुनि को हर जगह जाना पड़ा। अंत में भगवान ने कहा मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, कौन कर सकता है, अमरीश। तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपराध कर रहा है और हम चुप रहते हैं, तो वो भी अपराध है। इस विषय में चैतन्य भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा है। एक समय एक भक्त थे जिनका नाम था देवनंद पंडित। देवनंद पंडित बचपन से ब्रह्मचारी थे, बड़े तपस्वी, भागवत का अध्ययन करते थे, दिन रात भगवत का उपदेश देते थे। कमी केवल ये थी कि उन्हें भगवत का जो असली संदेश है भक्ति योग, उसका ज्ञान नहीं था। और एक और कमी ये थी कि वो चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो देवनंद पंडित ने संस्कृत का एक महाविद्यालय खोला था। तो एक समय वो संस्कृत में भागवत का उपदेश समझा रहे थे अपने विद्यार्थियों को, तो बाहर सड़क से श्रीवास पंडित चल के जा रहे थे। श्रीवास पंडित ने सुना, ओ भागवत की भी रचना। तो श्रीवास पंडित अंदर आ गए भागवत का उपदेश सुनने के लिए। और जब उन्होंने कृष्णा का नाम सुना और भागवत के श्लोक सुने, तो उनके मन में, उनके हृदय में ऐसा भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ कि वो रोने लगे। हाँ, क्या आंसू बहने लगे खुशी में। व्यक्ति रोता है दो स्थितियों में, एक है खुशी में, एक है दुख में। तो ये रो रहे थे क्योंकि कृष्णा का नाम उन्होंने सुना, उन्हें इतना आनंद आया। भक्त का क्या भाव रहता है, हर जगह कृष्णा का नाम, भक्त हर जगह कृष्णा को देखता है। एक समय प्रभुपाद जी एक मोटर में बैठ रहे थे बॉस्टन में, और सामने एक शराब का बार था, पर उसका नाम शुरू हो रहा था जी से। तो प्रभुपाद ने कहा, गोविंदा, पर नाम कुछ और था। तो भक्त जो है हर जगह कृष्ण को देखता है, प्रभुपाद जी हर जगह कृष्ण को देखते थे। तो देवनंद पंडित ने जब सुना भागवत का रचना कृष्ण के नाम, कृष्ण की लीलाएं, तो आंसू बहने लगे और वो जब रोने लगे। जो दूसरे विद्यार्थी थे उन्होंने कहा, कौन है ये रो रहा है, हम गुरु के उपदेश को नहीं सुन सकते। उसको श्रीवास पंडित को उठाकर बाहर फेंक दिया कमरे के, उठाकर ले जाओ बाहर, तुम यहां अंदर नहीं बैठ सकते। श्रीवास पंडित ने सह लिया, घर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु जो अंतर्यामी हैं, उन्हें तुरंत ये पता लग गया था कि श्रीवास के प्रति इतना गहरा अपराध किया है। किसने? देवनंद पंडित के विद्यार्थियों ने। वो चैतन्य महाप्रभु जी को यह भी पता था कि ये अपराध देवनंद पंडित की आंखों के सामने हुआ और देवनंद पंडित ने कुछ नहीं किया। देवनंद पंडित के सामने उनके विद्यार्थी इस महान संत को उठाकर उन्होंने बाहर फेंका। तो देवनंद पंडित, महाप्रभु चल रहे थे, सामने से देवनंद पंडित आ रहे थे। महाप्रभु ने कहा, तुम बड़े दोषी हो, तुम्हारे विद्यार्थियों ने शिवा जैसे महान संत का इतना गहरा अपराध किया और तुमने एक शब्द नहीं कहा, तुम अपराधी हो। तो जब देवनंद पंडित ने सुना कि महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए हैं क्योंकि उनके समक्ष ये अपराध हुआ और उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो श्री देवनंद पंडित बड़े दुखी थे। चैतन्य महाप्रभु के एक और भक्त थे राकेश्वर पंडित। राकेश्वर पंडित में ऐसी योग्यता थी, एक तो उनका बड़ा सुंदर कंठ था, वो नाचते थे तो 3 दिन 3 रात एक साथ एक बार उन्होंने नाचा। महाप्रभु गा रहे थे 72 आवर्स 3 दिन 3 रात के लिए, और देवनंद पंडित, राकेश्वर पंडित क्या कर रहे थे, नाच रहे थे। और जहां भी वो नाचते थे इतनी भीड़ हो जाती थी, वो सब आते थे उनके चरणों को छूने के लिए। तो ये जो देवनंद पंडित है, उनका एक सौभाग्य ये था कि राकेश पंडित जैसे शुद्ध भक्त के वो प्रिय मित्र थे। तो देवनंद पंडित ने एक तरह से तो अपराध को सह लिया, भागवत का उनको असली उपदेश भी नहीं पता था, पर दूसरी तरफ से भगवान की कृपा से राकेश्वर पंडित की संगत में वो रहते थे, तो उनको सूचना मिली कि राकेश्वर पंडित आ रहे हैं, तो उन्होंने राकेश्वर पंडित कीर्तन कर रहे थे तो बहुत भीड़ हो गई थी चारों तरफ। तो देवनंद पंडित ने सेवा की, क्या एक लाठी को लेकर राकेश्वर पंडित की सुरक्षा की और सबको दूर रखा कि कोई उनके चरणों को नहीं छू सके। और राकेश्वर पंडित की संगत में रहने से देवनंद पंडित समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु जी कोई साधारण पुरुष नहीं, पर कौन है, स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण। तो फिर देवनंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए और राकेश्वर पंडित की कृपा से वो बच गए अपराध के परिणाम से। तो चैतन्य देवनंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा, उनसे पूछा कि मैं भागवत का उपदेश तो देता हूं पर मुझे ये नहीं पता कि भागवत का असली संदेश क्या है, व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ द भागवत। तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत समझाई और कहा श्रीमद् भागवतम के शुरू में, बीच में और अंत में एक ही संदेश है, और क्या है वो संदेश, भक्ति योग का। और फिर देवनंद पंडित चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े प्रिय भक्त बने। तो दूसरे शब्दों में हमें अपराधों से बचना चाहिए। एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी कि श्रीवास पंडित को इतना आदर क्यों मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु जी उनके साथ ही श्रीवास के घर में इतना रोज कीर्तन करते हैं। तो उन्होंने श्रीवास के दरवाजे के आगे जो दुर्गा जी की सेवा का मसाला है, शराब वगैरह रख दी। क्या परिणाम हुआ, इस ब्राह्मण को खोर की बीमारी हो गई और ये ब्राह्मण थड़फते गया। एक दिन महाप्रभु जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए, ब्राह्मण ने माफी मांगी और ये अपना महाप्रभु ने कहा तुम थड़फते जाओ। फिर बहुत सालों तक थड़फते गए, फिर अंत में क्या, श्रीवास की कृपा से पापों के परिणाम से बचे। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। कई बार हम लोग के मन में बड़ा घमंड आ जाता है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरे बीच बिना कुछ चलेगा नहीं। अरे भाई, इस प्रकार का भाव रखोगे तो भगवान को भक्ति नहीं करने देंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, अगर आप हरि नाम को सदा अपने जीव के साथ जोड़कर रखना चाहते हो तो क्या भाव होना चाहिए, तो नाद पी सुनी चाहिए ना, थरोड़ पी सीना अमाने ना मना देना कितना नहीं सदा नहीं। हमने कई भक्त देखे जिनके मन में बड़ा घमंड आ जाता है, जब घमंड आ जाता है तो भगवान आपकी भक्ति नहीं लेंगे। अगर आप सोचते हो कि आपने भगवान के लिए बहुत कुछ किया है तभी आपको ये सुविधा होनी चाहिए, ये छूट होना चाहिए, तो ये भाव से भगवान आपकी भक्ति नहीं लेंगे। अगर आप ये सोचो हमने कुछ नहीं किया, हम तुच्छ हैं, पापी हैं, सबसे पतित हैं और हमें सबकी कृपा चाहिए, ये विनम्रता का भाव रखोगे फिर भगवान की कृपा प्राप्त होगी, फिर आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। और भक्ति में आगे बढ़ने के लक्षण क्या है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, सेवा भाव। तो ये श्लोक में भाज रहुगना कह रहे हैं कि मुझे अपराधों से बचाओ। अपराधों का बड़ा भयंकर परिणाम होता है, अपराधों के कारण भक्ति जुदा हो जाती है। आप चैतन्य चरितमृत में रामचंद्र पुरी की कथा पढ़ते हो, रामचंद्र पुरी एक ऊंचे कोटि के संत थे पर उन्हें ईर्ष्या द्वेष की बड़ी आदत थी और चैतन्य महाप्रभु जी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। क्या परिणाम हुआ, उनके गुरु ने कहा महाचंद्र पुरी ने तुम इन नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें देखते हुए मुझे शरीर त्यागना पड़े तो मेरा जीवन क्या है, असफल माना जाएगा। तो आप सब जो उपस्थित हो इस सभा में, आप सब भक्ति के मार्ग में जुड़े हो, पर आपको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। विनम्रता में लाभ है, अहंकार में नुकसान है। प्रभुपाद जी ने कितना महान कार्य किया। पश्चात प्रभुपाद जी को जब भक्त कहते थे, प्रभुपाद जी सब आपकी कृपा से ये सफलता प्राप्त हो रही है, प्रभुपाद जी कहते थे आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे में एक ही गुण था, मैंने अपने गुरु के वचनों को गंभीरता से लिया और इसको पालन करने का प्रयास किया। तो अपराध से हमें बचना चाहिए, चाहे आप बड़े भक्त हो या नए छोटे भक्त हो। अगर हम अपराधों से नहीं बचेंगे, वैष्णव की निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, पीछे चुगली करेंगे, पीछे चर्चा करेंगे, तो भगवान अंतर्यामी है। देवनंद पंडित ने अपराध को सहा और भगवान अंतर्यामी, उन्हें तुरंत ही सूचना मिल गई। भगवान अंतर्यामी है, वहीं भक्ति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और अगर हम सोचे नहीं हमने तो इतनी सेवा की थी, ये सेवा भाई सुरक्षा जरूर करेगा, पर अपराध जब करोगे तो सेवा आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। अपराध का बोझा सेवा के बोझे से ज्यादा भारी है। तो हम सबको बड़ी विनम्रता से अपने आप को तुच्छ निकम्मा मानने से, ठाकुर भक्ति विनोद ने एक प्रार्थना लिखी है जिसका नाम है शरणागति। तो शरणागति में ठाकुर बकरिया कहते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि हम सबसे निकम्मे भक्त हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे में कुछ योग्यता नहीं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे में कोई गुण नहीं, केवल अवगुण है। कृष्णदास कविराज जी चेतन चरित्रमृत में कहते हैं कि मेरे में इतने अवगुण हैं कि अगर कोई मेरा नाम भी लेगा तो उसके सारे गुण मिट जाएंगे। और हमारी क्या स्थिति है, कोई हमारा नाम नहीं ले तो हम कहते हाँ मेरा नाम भूल गए, मैंने इतनी सेवा की। हमें महान संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी संप्रदाय के जो संत हैं उनमें इतनी विनम्रता का भाव था कि उन्होंने अपने विषय में कोई सूचना ही नहीं छोड़ी। अगर आप जानने चाहो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ इनके पिता कौन था, माता कौन था, आप ढूंढ नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि उनमें इतना विनम्रता का भाव था कि वो अपने विषय में कोई सूचना नहीं देना चाहते थे किसी को। तो ये है गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत। कई बार हम सालों साल जुड़ जाते हैं संस्था में पर इसकी सिद्धांत को नहीं पहचानते। तो इसने आज जैसे कैसे पहचानते हैं कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये देखकर हरि नाम में कितनी रुचि है, शास्त्र में कितनी रुचि है, कितनी गहराई से विनम्रता का भाव अनुकूल हो रहा है, ये देखकर आप पहचानते हो ये एडवांस कर रहा है कि नहीं। अगर हम सदा आलोचना करते जाए, क्रोधित भाव से चर्चा करें तो सब जानते हैं हाँ ये देखकर पखंडी भक्त है। तो हमें असली भक्त बनना है और असली भक्त बनने के लिए हम सब में एक विनम्रता का भाव अनुकूल होना चाहिए। और इस कार्तिक के महीने में अगर आप प्रयास करोगे श्रद्धा से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो भगवान आपको सहयोग देंगे। अगर आप सचमुच प्रयास करो मैं अहंकार को छोड़ना चाहता हूं, झूठा अहंकार, और मुझे विनम्रता चाहिए, और सचमुच हृदय से यह भाव हो और आप सचमुच प्रयास भी करोगे तो परम भगवान अवश्य ही आपका सहयोग देंगे। पर अगर आप केवल दिखावा करोगे हाँ ऊपर से विनम्रता और अंदर से हाँ मेरा हुक्म चलेगा, फिर भक्ति में आप पीछे हट जाओगे और एक दिन भक्ति से बिल्कुल जुदा हो जाओगे। तो किसी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए हम इतने पुराने भक्त हैं, हम कुछ भी करेंगे, अपराधों की कोई चिंता नहीं। अगर किसी चीज का भय है, क्या अपराध का, महाराज रघुनाथ क्या कह रहे हैं, मुझे भय है मैंने जो अपराध किया है। तो अपराधों से बचना है तो निर्णय करके फिर से ये अपराध नहीं करो। ये नहीं कि जैसे प्रभुपाद जी कहते थे परीक्षित शुक्रदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने कहा एक हाथी तालाब में स्नान करता है, शरीर को साफ करता है, फिर बाहर निकलता है, फिर गंदा हो जाता है। तो ये नहीं आज हम अपराध करें कल कहें सॉरी फिर अपराध करें फिर करें सॉरी, नहीं। हमें सचमुच ही प्रयास करना चाहिए कि हम अपराधों से बचें। और अगर हमें शक है कि अपराध है या नहीं तो हम पूछ सकते हैं। तो ऐसे मैंने कहा कार्तिक के महीने में ही भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी को 1935 में आदेश दिया था, क्या ग्रंथों को क्या करो, प्रकाशित करो और वितरण करो। तो हर साल हमारे भक्त ग्रंथों के मैराथन में जुड़ते हैं, है कि नहीं? आप सब जुड़ते हो, एक साल भी जुड़ोगे। तो हम भक्तों का प्रयास क्या रहना चाहिए, इस सेवा में जुड़े। क्यों? हमारे आचार्यों ने इस सेवा पर बल दिया है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो क्या करो, इस उपदेश का वितरण करो। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा क्या प्रचार करता। तो आप सबसे निवेदन किया जा रहा है कि आप ग्रंथों के वितरण की सेवा में जुड़िए। मैं ब्राचार्य को कह रहा था कि दिल्ली में वो लोग मैराथन की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और 15 तारीख से सड़क में मैराथन शुरू करने लगे हैं। मायापुर मंदिर ने मैराथन शुरू भी कर दिया है कि इसका, भारत के कई मंदिर ने मैराथन शुरू कर दिया है। तो हम जब लेट हैं बॉम्बे में शुरू करने में, तो हमें यहां भी मैराथन, ये नहीं दिसंबर पहले को मैराथन शुरू करना, मैराथन हमें 15 तारीख से ही शुरू कर देना चाहिए। और ये ग्रंथों के वितरण की सेवा समाज के उद्धार के लिए है, समाज के सुधार के लिए। कई बार लोग पूछते हैं क्या कारण है ग्रंथों के वितरण की सेवा पर इतना बल दिया जाता है। इन ग्रंथों में क्या है, भगवान का ज्ञान। इन ग्रंथों में क्या है, भगवान का उपदेश। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सब कैसे जुड़े हो भक्ति में, 90% लोग कहेंगे ग्रंथों के प्रभाव के कारण। कई बार जब हम ग्रंथों का वितरण करते हैं तो हमारे मन में भाव रहता है कोई नहीं पढ़ेगा इन ग्रंथों को, पर अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो आज आप सब यहाँ वो होते क्या, ये मंदिर खाली होता। अगर वृंदावन जाओ तो आपको हजारों भक्त दिखेंगे, क्यों, इन ग्रंथों के प्रभाव से। तो आप सबसे निवेदन है, और इस विषय की चर्चा कल दोपहर के लेक्चर में भी गहराई के साथ समझाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस सेवा में जुड़िए। सब जुड़ोगे मैराथन में इस साल, कौन कौन सब जुड़ेंगे? हरिदास ने हाथ नहीं उठाया। सब जुड़ोगे सेवा में? तो असल में कभी कभी लोगों को लगता है इस काल में क्या, हमेशा कुछ ना कुछ मैराथन, कुछ ना कुछ प्रयास। हमें तो ऐसी संस्था चाहिए जहां आराम से हम रहे। ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमें इतनी सेवा दी है कि सांस लेने का समय नहीं मिलता। अगर बहुत समय होता तो हम क्या करते, सब माया में गिर जाते। वो कहते हैं ना, आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग क्या है, भूत का। तो इसका ने हमेशा, हमारे कई मंदिर हैं, आप विश्वास नहीं करो, रशिया में साल में 4 मैराथन होती हैं, 4 हर तीसरे महीने बाद। वो सब जाते हैं प्रयास ग्रंथों के वितरण की सेवा में। और आप तो भारत में हो जहाँ के हर व्यक्ति कृष्ण और राम की महिमा को जानता है और सेवा में जुड़ने को तैयार है। विदेशों में टेलीविजन में क्रिश्चियन चर्च एडवर्टाइजमेंट डालता है, हरे कृष्ण की गीता मत खरीदो। तो उस वातावरण में भी हमारे भक्त सड़क में जाते हैं, यहां तो कोई ऐसे नहीं करता। तो यहां हर प्रकार की सुविधा है, सिर्फ हमारे उत्साह की आवश्यकता है। और जब आप सिद्धांत समझ जाओ कि ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है समाज के सुधार के लिए, प्रभुपाद जी ने कहा जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। क्यों? कि इन ग्रंथों के द्वारा प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, आप सब कई बार पहले भी ग्रंथों के वितरण की सेवा के महत्व के विषय में सुनाए हो, पर आपको हम फिर से याद दिला रहे हैं। असल में जो गीता भगवत का संदेश है आप कई बार सुन बैठे हो, है कि नहीं? ये थोड़ी कि आज के प्रवचन में हमने आपको कोई नई कथा सुनाई जो आपने पहले नहीं सुनी, कई बार सुना है आपने, हरि नाम की महिमा, वैष्णव अपराध से बचना, विनम्रता का भाव अब रोज ही सुनते हो, तो हम इतने ढीठ हैं कि सुनने के बाद भी भूल जाते हैं। हमें बार बार सुनने की आवश्यकता है। अगर भगवान चाहते तो गीता को दो श्लोक में खत्म कर सकते थे, सर्वाधर्मा परित्यज्य। भगवान ने इतने गहराई के साथ क्यों हमें समझाया। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों द्वारा भगवान यह भाव प्रकट कर रहे हैं आत्मा सनातन है, पर अगर वो चाहते तो एक श्लोक में कर सकते थे। तो प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं, रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। बार बार सुनना आवश्यक है तो ये भाव हमारे हृदय में बैठेगा। जैसे भौतिक दुनिया में सबको पता है सोनी टेलीविजन है ना, तो सैमसंग टेलीफोन बनाता है, सबको मालूम है। तो पर आप जिधर जाओगे आप सैमसंग का एडवर्टीजमेंट देखोगे, सोनी का एडवर्टीजमेंट देखोगे ना, टीवी में देखोगे, रेडियो में देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे। क्यों? क्योंकि उनका भी क्या भाव है। आप भूल जाओगे तो बार बार आपको याद दिला रहे हैं, या टेलीफोन खरीदोगे तो सैमसंग खरीदोगे, ये उनका भाव है ना। तो इसी प्रकार हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम जगह बिलबोर्ड लगाएं, टीवी में दिखाएं, तो हमें बार बार प्रचार करना पड़ता है, आपको याद दिलाना पड़ता है। तो आप सब जुड़ोगे मैराथन में? कब से मैराथन शुरू होना चाहिए? आज से। ऐसे में हमें रोज मैराथन में रहना चाहिए। माया का मैराथन रोज चलता है कि नहीं? माया कभी विश्राम करती है? हाँ, आप कहते संडे को हम दफ्तर नहीं जाएंगे, छुट्टी, पर माया कभी छुट्टी करती है? सर आज छुट्टी है शनिचरवार, माया ने आज छुट्टी की है? नहीं, माया आज भी कर। जब माया का मैराथन रोज चलता है तो हमारा मैराथन भी रोज चलना चाहिए, है ना। ये है भक्तों का भाव। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Any questions? Any more points, brother? Any points to add? No questions? Yes, you always have questions.
Hare Krishna Maharaj.
Yes.
Maharaj, this generally we hear that if we commit an offense to a Vaishnava, we should beg forgiveness from the same Vaishnava. But in case of Devanand Pandit, apparently he didn't beg forgiveness from Srivas Pandit. He just served Vakreshwar Pandit. So, how was he relieved of that aparad?
He got relieved by Chaitanya Mahaprabhu's mercy. And he served Vakreshwar Pandit very humbly. Lord Chaitanya then forgave him and he began to accept Lord Chaitanya as the Supreme Lord.
But then in case of that Brahman who again...
Yes. Yeah. In the case of the Brahman who finished Shiva, Lord Chaitanya said you have to beg forgiveness from him.
Yeah.
But in this case, the Lord also forgave him.
Okay.
Yes, बोलिए।
हरे कृष्ण महाराज, समटाइम्स वेन वी गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन वी कम अक्रॉस समटाइम्स कंजूस पीपल ऑल्सो।
कंजूस?
दे डोंट वॉन्ट टू परचेज भगवद गीता इवन फॉर 50% कंसेशन। So for them, can we not distribute smaller books of Prabhupada like Matchless Gift?
Okay, I understand.
I'll
translate your question in Hindi because these are... So unka prashan ye tha ki kai baar wo book distribution mein jaate hain, hum 50% chhoot mein Gita bech rahe hain, to bhi log nahin lete. To hum chhoti kitab nahin baat sakte. Inhone kaha ki kabhi kabhi kanjoos milte hain. Main kehta hun ki hamesha kanjoos milte hain. क्योंकि सब एक कंज्यूस है। सिनेमा के टिकट के लिए 400 रुपए खर्च देंगे, क्या क्या भाव है आजकल सिनेमा टिकट का? 300-400 रुपए। और गीता के लिए एक तो लोग कहेंगे धन नहीं है, तो आप जरा प्रचार करो, आप सिनेमा के लिए जाते हो, ये जाते हो, वो जाते हो, और आप अगर जब भी वो नहीं माने तो छोटी किताब दे दो। हमारे पास अनेक ग्रंथ हैं, बड़ी किताबें, छोटी किताबें, मीडियम किताबें, कुछ भी बांटो। हाँ, तो सब उत्साहित हो ग्रंथों के वितरण की सेवा के लिए। ये साल आपके बॉम्बे मंदिर का कोटा क्या है? बोल सको गुकलेश्वर, 2 लाख गीता बांटना है। 2 लाख गीता बांटोगे मतलब कि एक गीता को अगर 3-4 आदमी भी पढ़े तो 6-7 लाख आदमी पढ़ेंगे। एक ग्रंथ को अक्सर 3 से 6 लोग पढ़ते हैं। आप समझ रहे, एक गीता आपने मान लो, एक गीता घर में बांटी तो ये संभव है वो घर में कई लोग पढ़ेंगे। तो आपको कई लोग नहीं भी पढ़ते, कई लोग नहीं भी पढ़ते पर 4 साल बाद भी पढ़ेंगे। मैं अनेक कथाएं जानता हूं जहां किसी ने गीता आज प्राप्त की और 5 साल बाद गीता खोली। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे दीज आर टाइम बॉम्ब्स, किसी वक्त भी एक्सप्लोड हो सकता है। ओके, हरे कृष्णा। तो सब ज्यादा प्रचार की सेवा में बल दो। प्रचार की सेवा सब सेवाओं से ज्यादा ऊंची सेवा है। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न, मिलो
एंड देन यू ऑल्सो सेड दैट वी डोंट सी।
अरे क्लास खत्म नहीं हुआ।
वी शुड नॉट टॉलरेट अदर्स ऑफेंडिंग अदर्स, वी शुड रेज वॉइस और समथिंग, बट बिकॉज ऑफ आवर ओन अर्थस वी सी समटाइम्स लॉट ऑफ फॉल्ट्स हियर एंड देयर, and it is also that if we start pointing them, our heart becomes hard, and also it's not a business of ours, Krishna will take care of that, how to balance both these things.
Agar aap kisi bhakt mein koi nuks dekhte ho, wo asli nuks hai, to aap unhe aadar ke saath suna sakte ho, aap haath jod kar keh sakte ho ki bura nahi mano, ye nuks hai. Agar aap kisi mein nuks dekhte ho aur aap wo nuks ko chupao तो आप उस व्यक्ति के दुश्मन बन जाते हो। अगर आप किसके मित्र हो तो अगर आप नुक्स देखते हो तो उस पर विनम्रता के साथ सुनाओ, ये नहीं क्रोध के साथ। ओके, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।